भाई जी मधुबन से पावन भूमि से हम सबके बीच में आए हैं, तो उनके मुखारविंद से सुनेंगे प्रश्न आपके उत्तर भाई जी की। जैसे नाम ही है सच इन, अर्थात सच अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, तो सच ही निकलेगा। तो पहला प्रश्न भाई जी के लिए, भाई जी ये कुमार भाई है, सेंटर पे रोज आता है, उसने प्रश्न पूछा है, हमारी बुद्धि में ज्ञान है परंतु हर बार वही वही गलती रिपीट हो रही है, यह भी पता है कि ये गलत है, उसका परिणाम भी गलत ही होगा, बार बार दुख धोखा और दर्द का भी अनुभव किया हुआ है, गलती कर लेने के बाद बहुत पश्चाताप भी होता रहता है, पर वो गलती फिर भी हो रही है, कंट्रोल नहीं है, कैसे कंट्रोल करें। ऐसा ही हुबहू एक दूसरे कुमार ने प्रश्न किया कि हर परिस्थिति में लगातार मन में नकारात्मक संकल्प चलते रहते हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, कैसे कंट्रोल करें। ये अनलिमिटेड प्रोडक्शन है विचारों का। दोनों भाइयों के प्रश्न वही है कि कंट्रोल नहीं है, गलती पता है पर गलती का परिणाम भी पता है पर वही बार बार होते जा रही है, क्या करे क्या ना करे। भाई जी इस पर प्रकाश डालें।
अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 1969, इस यज्ञ की सबसे पहली अव्यक्त वाणी। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी 1969 और सबसे पहली अव्यक्त वाणी चली 21 दिसंबर 1969। उस वाणी में तीव्र पुरुषार्थ की एक परिभाषा है, ज्ञान तुम्हारे पास बहुत है परंतु तीव्र पुरुषार्थ अर्थात समय पर ज्ञान याद आ जाना, फुल स्टॉप। बाबा ने क्या कहा था, तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा, समय पर ज्ञान याद आ जाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। हर व्यक्ति गलतियां करते रहता है, सीखता नहीं है। आईएएस की एग्जाम में कभी एक निबंध आया था जिस पर आईएएस के कैंडिडेट्स जो कि परीक्षा में बैठे थे उनके लिए, द ओनली लेसन वी हैव लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री इज दैट वी हैव नॉट लर्न एनी लेसन। इतिहास से यदि हमने कुछ सीखा है, कोई सबक सीखा है, तो यह सीखा है कि हमने कुछ भी नहीं सीखा। न मालूम मनुष्य को गलतियों से इतना प्यार क्यों है, गलती तो करता है परंतु उसका महसूसता उतनी गहराई से नहीं कर पाता, इसलिए वही वही गलती फिर करते रहता है। इसलिए जब गलती हो तुरंत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना, चिंतन की आवश्यकता है, मनन की आवश्यकता है, क्यों ये सब हुआ, किस कारण से हुआ, कौन सी मन में छिपी हुई और दबी हुई वासना है, क्यों ऐसा हुआ, उस गलती की गहराई में जाना, एकांत में जाना, सोचना, चिंतन करना, थोड़ी सी चर्चा करना उसके विषय में। तुरंत प्रतिज्ञा नहीं कर लेना इसके बाद मैं कभी नहीं करूंगा ऐसी गलती, ऐसी प्रतिज्ञा की गए फिर तुरंत गलती करता है, फिर वही। जिस व्यक्ति के लिए जैसे कोई शराब पीता है, सारे दिन भर संकल्प करता है मैं शराब नहीं पीऊंगा, शराब की वजह से मेरा घर परिवार बर्बाद हो रहा है, बहुत खराब है, बीमारियां हो जाती है, और सोचते सोचते शाम आ जाती है, और शाम होते ही अपने आप कदम मधुशाला की ओर, अपने आप, कोई उसे कहता नहीं, अपने आप चला जाता है, पी लेता है, और फिर आके फिर दुखी होता है, फिर पश्चाताप करता है। जब तक ये रियलाइज ना हो जाए कि ये व्यर्थ है, जब तक व्यर्थता का ज्ञान ना हो जाए, तब तक वही चीज हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जैसे हम ज्ञान में आए, ज्ञान में आने के बाद ऐसा कोई है कि जिसको अभी भी बाजार से गुजरो तो इच्छा होती है कितनी अच्छी जलेबी बनी है खा लूं? तो ऐसा होता है किसी को? जिसने अभी अभी ज्ञान में आया उसको भी नहीं होता है, तुरंत रिजेक्ट कर दिया है कि ये हमारे लिए है ही नहीं। कि होता है अभी भी किसको, इधर से मैंने जाऊंगा उधर हलवाई की दुकान है, फिर मेरा कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर और बाबा को बोलना पड़ता है सॉरी और सब। शायद ही किसी को होता होगा। ये एक ऐसी धारणा है कि जैसे ही कोई ब्राह्मण बनता है तुरंत स्वीकार कर लेता है, इसके लिए बहुत कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि व्यर्थता को जान लिया, ये व्यर्थ है, ये हमारे लिए है ही नहीं। परंतु विकारों के लिए ऐसा नहीं हो पाता, वो सूक्ष्म रूप से आते रहते हैं आते रहते हैं। गलतियों के लिए ऐसा नहीं होता है, गलतियां होती रहती है होती रहती है होती रहती है होती रहती है। गलती करना इसमें कोई दोष नहीं है, पर वही गलती दोबारा करना पाप की श्रेणी में है। एक बार तो गलती सभी करता है, सभी कर लेते हैं, पर वही गलती दोबारा करना अर्थात पहली गलती के बाद सही ढंग से उसका एनालिसिस अवलोकन विश्लेषण एनालिसिस नहीं किया था। सोचो, रुको, चिंतन करो, क्या कमी रह गई और सुधार करो। सोचना उसके विषय में, पढ़ना उसके विषय में, क्यों ऐसा हुआ, ज्ञान की कौन सी पॉइंट अप्लाई करूं। अमृत वेले शक्तिशाली योग में बाबा से पूछना, बाबा ये गलती हुई है क्या किया जाए, बाप तुम्हें राय देंगे। सच्ची दिल से यदि पूछा जाए तो मिस्टेक्स बहुत बड़ा एक सबक है। कभी रास्तों की डगर मिले, कभी हादसों का सफर मिले, ये चराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है। गीत सुना है ना, ये इस पर एक बार क्लास भी कराई थी कभी शांतिवन में, राह के चिराग, ये चराग है मेरी राह के, ये जो गलतियां है ना यही मुझे सिखाने वाले, यही मुझे आगे का रास्ता बताएंगे। कभी मंजिलों की डगर, हादसों की डगर मिले, ये सिखाएंगे, दे विल बिकम द टॉर्च लाइट। केवल रुकना, जानना, समझना, और पहले सबसे पहले तो स्वीकार करना, हां मुझसे गलती हुई है। क्योंकि मन अंदर से मानने को तैयार नहीं, तर्क वितर्क देता है कि नहीं ये गलती नहीं है, ठीक ठाक है, और बड़े जाल बुनता है। समझना है इस मन को, किस तरह इसने धोखा दिया, बड़ा ट्रिकस्टर है, ट्रिक मास्टर है, चालबाज है ये मन, बहुरूपिया है, अलग अलग रूप धारण करता है और गलतियां करता है और फिर तर्क देता है। सबसे पहली चीज है गलती होने के बाद स्वीकार करना, हां हुई है। महाभारत में द्रौपदी दुर्योधन से कहती है अंधे का पुत्र अंधा, उसके बाद एक दृश्य है, युधिष्ठिर द्रौपदी से मिलता है और कहता है क्या तुमने दुर्योधन को ऐसा कहा? वो कहती है हां कह दिया, और कहने के बाद मुझे पता चला नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो कहने से उसने तीन चीजों का उल्लंघन किया। एक तो दुर्योधन हमारा अतिथि था उस समय और उसका अपमान किया, दुर्योधन हमारा अनुज था, छोटा था, अपमान किया, और तीसरा ज्येष्ठ पिताश्री का भी अपमान किया धृतराष्ट्र। तो वो कहती है आप मुझे दो दंड देंगे मैं स्वीकार करती हूं। युधिष्ठिर कहता है ये वो अपराध है जिसका दंड नहीं, इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। एक है पश्चाताप, एक है प्रायश्चित, दोनों में क्या अंतर है? पश्चाताप अर्थात मैंने ये गलत किया, अब नहीं करूंगा। प्रायश्चित अर्थात मैं ही गलत हूं। पश्चाताप बाहरी है, प्रायश्चित भीतरी है। प्रायश्चित अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन, परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। पश्चाताप तो करते, प्रायश्चित नहीं कर पाते। तो जो गलती हुई है, सबसे पहले एकांत में जाना और उस तरह के दंड अपने आप को नहीं देना कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, दिन भर भोजन मत करो, रात भर स्वप्न में ब्रह्मा भोजन, ऐसा प्रायश्चित कोई काम का नहीं है। दमन नहीं करना है, चीजों को, वस्तुओं को, घटनाओं को समझना है। क्यों हुई ये चीज? जरूर कोई ना कोई ट्रिगर रहा है। वो ट्रिगर पॉइंट कौन सा है? हो सकता है वो बचपन का है, कोई भय, कोई इनसिक्योरिटी। क्यों चोरी कर ली किसी ने? इच्छा नहीं थी, पता नहीं था, फिर भी कर ली और बाद में पश्चाताप। ट्रिगर पॉइंट को ढूंढना है, बीज की तलाश करनी है, कहां से उत्पन्न हुई है, खोज करनी है उसकी। अपने ही मन में जाना है, अमृत शक्तिशाली योग में बाबा से पूछना है क्या किया जाए। बाबा मैंने सब कुछ कर लिया फिर भी ये संस्कार जाता ही नहीं, क्या करूं? कुछ है तुम्हारे पास तो बताओ। ऐसी नम्रता की आवश्यकता है। अकड़ के जो खड़ा रहता है, नहीं नहीं हमने थोड़ी ना गलती की, सभी करते हैं, यह कोई छोटी गलती है? हमसे बड़े बड़े पापी तो यहां बैठे हैं। अगर ऐसा भाव है तो कभी भी बदलेंगे नहीं। छोटा समझना और स्वीकार करना, खोज करना, अपने अपराध को मानना। भक्त तो देखो ऐसी दिखाई है भक्तों की दशा कि यदि भक्ति करते करते मुक्ति की इच्छा भी उत्पन्न हो जाए तो उनको लगता है ये अपराध है। भक्ति वात्सु न मज मुक्ति ची जड़ली रे व्याधि, विठला मीच खरा अपराधी। मराठी संत कहता है कि भक्ति करते करते अचानक मुक्ति की इच्छा जाग उठी, ये तो अपराध हो गया, अर्थात मैं भक्ति छोड़ना चाहता हूं। क्या भक्ति से भी बड़ा कुछ है? प्रभु प्रेम से भी बड़ा कुछ है। प्रभु प्रेम ही तो प्रसाद है, प्रभु प्रेम का। विठला मीच खरा अपराधी, मैं ही अपराधी हूं। तो अपनी गलती को स्वीकार करना, कारण को ढूंढना, चर्चा करना, जो अनुभवी है उनके पास जाना, उनसे सीखना, फिर दृढ़ संकल्प करना और फिर प्राण जाए पर वचन ना जाए, तभी गलती से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो वही गलती बार 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 करते करते और फिर हतोत्साहित उदास हो जाएगी चेतना। ओम शांति।
बहुत सुंदर। हमने सीखा कि अभी अंदर जाकर डुबकी लगानी है और सेल्फ रियलाइजेशन करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, तब गलती से ऊपर उठेंगे, नहीं तो बार बार रिपीट होते रहेगी। भाई जी अगला प्रश्न है, ये एक बांदेला कुमार है। बांदेली कुमारियां भी होती हैं, माताएं भी होती हैं, पर ये बांदेला कुमार है। इसने प्रश्न किया है कि मैं 6 साल से ज्ञान में हूं, पहले माता पिता सहयोगी थे, मुरली के लिए रोकते टोकते नहीं थे, परंतु जब से उन्हें पता पड़ा है कि मैं इसी मार्ग पर जीवन समर्पित करना चाहता हूं, मतलब गृहस्थी नहीं बनाना चाहता हूं, तब से वे विरोधी हो गए हैं। मुरली क्लास बंद करवा दी है, शादी का दबाव बना रहे हैं। वो दोनों रोज स्वयं ही स्वयं को मारते हैं, शादी न करना मेरा दृढ़ निश्चय है, कृपया मेरी समस्या का हल करें।
समस्या माता पिता नहीं है, समस्या तुम्हारा मोह है। उनका विरोध ऊपरी है, वास्तव में समस्या मोह है। बड़ी ही विरोधाभासी और सूक्ष्म बात है। पर यही सत्य है। वास्तव में अभी भी संपूर्ण निश्चय की कमी है। जब हम ज्ञान में आए थे, क्या हमने भक्ति मार्ग वालों को जाकर पूछा था कि हमको भगवान मिले, सब ठीक है ना, हम जाए ना, पूछा था क्या? साधु संतों के पास गए थे, आज तक हम आपकी शरण में आते हैं, अभी हम भगवान मिले हम जा रहे, मैं ठीक तो हूं ना, ये राइट मार्ग तो है ना, पूछा था क्या कभी? ये दूसरी बात। तीसरा, जब इसी में जो संपूर्ण निश्चय है उसे कोई भय नहीं, उसे कोई चिंता नहीं। और तीसरा, स्वयं का अहंकार कि हम ज्ञान में हैं और हमने भगवान को पा लिया, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तुम कितना भी कुछ मुझे कहो मैं नहीं मानने वाला, ये भी एक सूक्ष्म अहंकार है। और चोट माँ बाप को इस अहंकार से लगी है, तुम्हारे ज्ञान में चलने से कम लगी है। ज्ञान में चलना कोई खराब बात नहीं है, ज्ञान में चलने का घमंड ये समस्या का कारण है, उसने उन्हें आहत किया है। उन्हें समझाने के कई सारे तरीके हैं, परंतु जो पहली बार समझाया होगा, पहली बार उनको बताया होगा, उस शब्द में, उस वाणी में अहंकार की झलक थी, उसने उन्हें आहत किया है। और जहां अहंकार होगा वहां विरोध होगा, ये सूक्ष्म कारण है सारे, जो शायद ऊपर से कहीं नहीं दिखाई दे रहे। ऊपर से तो दिखाई दे रहा ये राइट है, वो विरोध नहीं करना चाहिए उन्होंने, पर क्यों कर रहे हैं? अब चौथा कारण माता पिता की ओर से भी हो सकता है, शायद उनका पार्ट नहीं, शायद वो इस ज्ञान की गहराई को नहीं समझ पाए, शायद उनके अपने पाप के बोझ बहुत अधिक है, शायद वो ऐसे कभी अनुभव से गुजरे ही नहीं, प्रभु प्रेम के, ईश्वरीय नशा कभी उनको हुआ ही नहीं। वो जिस दुनिया में जीते हैं वो कोई और दुनिया है, भौतिकवादी, उन्हें इस ईश्वरीय दुनिया का कोई आभास ही नहीं, तो कैसे समझ पाएंगे इसकी बातों को? इसे अपना निर्णय खुद लेना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अपना निर्णय है, कोई और हमें फोर्स कर ही नहीं सकता। हम कोई गाय नहीं है कि कोई हाँक कर ले जाए, या गाय है, द्रोणाचार्य प्लान बनाता है कि मैं युधिष्ठिर को बंदी बना दूंगा, युद्ध खत्म, क्योंकि राजा ही बंदी हो गया तो युद्ध खत्म। भीम और अर्जुन कहते हैं, क्या द्रोणाचार्य, क्या हमारे भैया गाय है जो उसे हाँक कर ले जाएंगे? हम खड़े हैं यहां, बकरी है जो कोई आकर पकड़ के ले जाएगा? हम स्वयं शक्तिशाली है। किसी माता का एक बच्चा था और उसी ने उसको ज्ञान में लाया, माता ने अपने बेटे को, और वो बेटा इतना पक्का कुमार बन गया कि बस अब माता जी को बहू चाहिए, अब क्या करे? और बेटे को खुद ही ज्ञान में लाया। अब वो कहता है मैं नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। माता जी कहती है तूने अगर नहीं की तो देख लेना, मेरी लाश ही दिखेगी तुझे, मुझे बहू चाहिए, और बहू भी अच्छी बीके। बीके मैट्रिमोनी वेबसाइट, शादी करता है और बहू आती है खतरनाक, तेज तर्राक, हर दिन झगड़े, हर दिन झगड़े। बेटा कहता है देखा तुमने ही कहा था ना बहू चाहिए, ये लो। माता जी कहते हैं मैंने तो कहा था पर शादी तो तुमने की ना, अभी जो कह रहे करो 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 करो, एक दिन वही कहेंगे हमने तो खाली कहा था, बाकी करने का डिसीजन तो तुम्हारा था, इच्छा थी इसलिए तो की। वो भी बदल जाएंगे, वो भी पलट जाएंगे, कौन स्वयं को दोषी ठहराएगा? हर एक ब्लेम गेम डाल देंगे उसी के ऊपर। और दूसरी अगली बात, सूक्ष्म मनसा सेवा करनी है उन मां बाप की और उनका सहारा भी बनना है, आर्थिक रूप से यदि और कोई नहीं है तो वो पालना तो करनी पड़ेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। परंतु इसका मतलब ये नहीं, स्पष्ट बात की जाए उनसे कि मैं तुम्हारा सब कुछ करूंगा, पर इसके लिए मुझे कुछ मत बोलो, ये मेरा अपना जीवन है। और एक बात, टाल देना करूंगा, जल्दी क्या है, अभी मुझे थोड़ा बिजनेस करना है, करियर है, ये है वो है, एक साल के बाद करूंगा, ये सबसे अच्छी विधि है, पोस्टपोन कर देना। इसने क्या किया होगा, सबसे पहले ही उनका दिल तोड़ दिया। नहीं, ज्ञान का ऐसा नशा, कोई मार्ग में आया तो सबको हटा दूंगा, ऐसे नशे के वजह से बड़ा अहंकार, थोड़ा सा सौम्य, थोड़ा सा मृदु, थोड़ा सा धीरज करना है, करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। अभी सुबह भी कहा था ना, शायद मधुबन के किसी भाई से पूछा था कि भाई साहब आपने शादी क्यों नहीं की, अरे टाइम ही नहीं मिला। सुबह से लेकर रात तक सेवा सेवा सेवा, बड़े हंसाते हैं, टाइम ही नहीं मिला। तो पोस्टपोन करते जाना ऐसी चीजों को, बाद में, अगले साल तो बिल्कुल पक्का है। तो इस विधि से, और जैसे कहा, मनसा से सकाश, सहयोग की किरणें, शक्तियों की किरणें, प्रभु प्रेम की किरणें उन्हें दो, डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर, ये तीन चीजें उन्हें देनी है। डिवाइन लाइट प्रकाश, डिवाइन लव ईश्वरीय प्रेम, डिवाइन पावर शक्ति देना उनमें, उनकी सूक्ष्म रीति से सेवा करना, धीरे 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 सहयोगी हो जाएंगे। और रही बात, अगर जबरदस्ती करते हैं तो फिर अपने निश्चय पर पक्का रहना, फिर कुछ नहीं करना, फिर हिलना नहीं, फिर तो कुछ भी हो सकता है। पर उस सब के लिए, ये सब कुछ करने के बाद में भी विरोध करते, सब कुछ होने के बाद, तो फिर अपने निश्चय पर पक्का रहना है। एक कुमार था और उसने सब कुछ किया, अपने माँ बाप को समझाया, सब कुछ किया, पर वो मानने को तैयार नहीं थे, उसकी जबरदस्ती शादी कराई। शादी के मंडप से भाग गया वो, और पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और मर गए। अब बोलो, बड़े सूक्ष्म मैटर है ये सारे, थोड़ा धीरज से ध्यान से काम करना पड़ता है इसमें, नहीं तो आत्मग्लानी होगी कि मेरी वजह से हो गया वो। ओम शांति।
बहुत सुंदर। और भी जिसके मन में ये प्रश्न होगा ऐसा कोई, तो उसका भी समाधान निश्चित ही हो गया भाई जी के उस उत्तर से। बहुत जोरदार तालियां हो जाए। अगला प्रश्न है, एक गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भाई जी का प्रश्न है। वो कहते हैं, मैं गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए बाबा की इस ज्ञान मार्ग में चल पड़ा हूं। घर पर युगल रोज ब्रह्मा भोजन बनाती है, भोग लगाती है, मन शांत रहता है, लेकिन जब जब हमें तोड़ निभाने अर्थ अपने रिश्तेदारों, मित्र संबंधियों के शादी विवाह व जन्मदिन आदि के कार्यक्रमों में शामिल होना है, तो हम वहां भोजन ग्रहण कर लेते हैं। उस कार्यक्रम के बाद लगभग 2-3 दिन तक तो मन खाता रहता है कि नाहक हमने वहां भोजन खा लिया। जब उन्हें हम भोजन ग्रहण करने से मना करते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं, या फिर ब्रह्मा कुमारी इसके लिए गलत गलत सोचते हैं। कृपया इस असमंजस से मुझे बाहर निकाले।
अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, तुम्हें सभी आत्माओं को सुख देना है, परंतु श्रीमत के विरुद्ध यदि किसी को सुख देने का प्रयत्न करोगे तो दुखी होना पड़ेगा। कोई पुराना दोस्त मिल गया अज्ञान काल का, अभी हम ज्ञान में आ गए, वो ज्ञान में तो आया ही नहीं, वो वैसा ही है, आकर हमसे कहता है चलो पहले जैसे थोड़ा पार्टी कुछ करें, होटल में जाके खाना खाए, क्या करेंगे? उसका दिल तोड़ देंगे, क्या करेंगे? बोलो आप बताओ। भाइयों का प्रश्न है। कोई पुराना बचपन का एकदम लंगोटिया यार आ गया, अचानक कहां से प्रकट हो गया पता नहीं, जिसके साथ हम बड़ा मौज मस्ती किया करते थे और अब हम ज्ञान में आ गए और सारे नियम मर्यादा है, और वो आके उसको कुछ पता नहीं, वो कहता है चलो जरा घूमते घूम के जरा मार होटल में जाके कुछ खाते हैं, तो क्या करेंगे आप भाई बताएंगे? क्या करेंगे, क्या बोल देंगे? बस यही रहा तुम्हारा प्यार? कहां गई अपनी दोस्ती? उसको समझाना है कि तब हमारा वो जीवन था, अब हमारा ये जीवन है। अगर ऐसी ही तोड़ निभाते रहेंगे तो जन्म भर पश्चाताप ही करते रहना पड़ेगा। तोड़ निभाना इसका अर्थ ये नहीं श्रीमत का उल्लंघन करना, तोड़ निभाना अर्थात ये नहीं कि श्रीमत को हम तोड़ते रहे। भगवान की क्या श्रीमत है, उनको भी समझाना। इसलिए हम नहीं खा रहे, इसलिए हम आपके पास से नहीं खा रहे, इसलिए नहीं कि हमें आपसे घृणा है, इसलिए नहीं कि हम आप शूद्र है, इसलिए नहीं कि हम अपने आप को महान समझते हैं। अभी हम इस ज्ञान में हैं, इसलिए हमें यहां यह सिखाया गया है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। किसी का उपवास होता है तो जबरदस्ती करते हैं क्या पार्टी में? उसको कितना छाती तान के फुला के कहता है कि आज मेरा उपवास है, सब भी उसे कितने सम्मान से देखते हैं कि इनका आज उपवास है। कोई डायबिटिक पेशेंट है और अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, बड़ा हार्ट अटैक हुआ, शुगर 500 है, और वो आ जाए आपका दोस्त, उसको कहते खाओ खाओ खाओ? नहीं कहते। उसी तरह ये भी हमारा नियम है, ये भी हमारी मर्यादा है। वो हॉस्पिटल की नर्स, हॉस्पिटल का ड्रेस, नर्स का ड्रेस पहन के सड़क से जाती है, उसको लगता है लोग क्या कहेंगे, लगता है उसको? मिलिट्री वाले अपना मिलिट्री का ड्रेस पहनते, उनको लगता है अरे लोग क्या कहेंगे? नहीं लगता है। सिख लोग पगड़ी पहनते, उनको लगता है लोग क्या कहेंगे, हटाओ इसको, परवाह नहीं करते किसी की। ये तो हमारे निश्चय की ही कमी है जो हम एडजस्ट करना चाहते हैं उनके साथ। यहां एडजस्टमेंट की कोई बात ही नहीं है। इस मार्ग पर आ गए तो इधर या उधर दो नाव में पैर रखोगे और दोनों अलग दिशाओं में जा रही है, चीर जाओगे। यू कैनॉट सर्व टू मास्टर्स। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, एक ही मालिक की सेवा करो, एक ही मिलेगा, दो नहीं। संसार चाहिए या भगवान, राम चाहिए या काम। संसार के लोकलाज को की परवाह करते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और संसार में जो भी महान आत्माएं हुए उन सबको इन सब परिस्थितियों से गुजरना पड़ा और उसको पार करके ही आगे गए। सभी का विरोध हुआ। तीन स्टेजेस है इसमें, थ्री स्टेजेस। कोई भी नई धारणा जब की जाती है, कोई भी नया धर्म जब स्थापन होता है, जब भी कोई नई संस्था उत्पन्न होती है, कोई भी नई बात हम सामने रखते हैं सबके, या इस तरह से अचानक जीवन परिवर्तन होता है, तीन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला विरोध, विरोध करते हैं लोग, अपोजिशन, जबरदस्त विरोध करेंगे। दूसरा हंसी उड़ाएंगे, रेडिक्यूल, और तीसरा एक्सेप्टेंस। इस संस्था के साथ भी यही हुआ है, लोगों ने विरोध किया, कितनों ने हंसी उड़ाई, और बाद में अब सब ने स्वीकार कर लिया। तो जो वो लोग हैं उन्हें भी धीरे धीरे पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल पक्के है अपनी धारणा के। वो जैन लोग, जैन साध्वियां घर पे आती है, उनको कोई जबरदस्ती करता है कि रात को भोजन के लिए? नहीं, उनको शाम से पहले उनका भोजन हो जाता है, उनकी धारणा है और बाकी लोगों ने भी स्वीकार कर लिया, वैसे ये भी हमारी धारणा है, उन्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा। हम ही यदि हिल जाए, हम ही कहीं चले जाए, वो कहेगा थोड़ा सा खा लो, हम कहेंगे नहीं 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 थोड़ा तो नहीं खा, हम तो बाहर का नहीं खाते। वो कहेंगे समोसा तो खा लो, अच्छा समोसा, प्याज तो नहीं है ना उसमें, है चलो प्याज निकाल दो और बाकी दे दो, एडजस्टेड श्रीमत, ऐसा अगर है तो फिर काम नहीं होगा, पक्के अर्थात पक्के। तो यहां पर भी जो दाम्पत्य है उनको भी अपनी धारणाओं को पक्का करना पड़ेगा और उनको बड़े प्यार से नम्रता से समझा देना पड़ेगा कि हम आएंगे पर हम ये तो नहीं खाएंगे, आप हमारे लिए कुछ दूसरी चीजों का व्यवस्था करो। एक दूसरा, हम आपके घर में आएंगे पर भोजन हम ही बनाएंगे, ये भी कर सकते हैं, हम आपके घर में आएंगे पर आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए हम बनाएंगे, तो अच्छा ही है ना, उनका भी फायदा हमारा भी फायदा, तो ऐसे करना है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। नो एडजस्टेड श्रीमत, श्रीमत मीन्स ओनली श्रीमत। तो इतने कॉन्फिडेंस से और इतने नशे से हमें इस यूनिफॉर्म में चलना है कि लोग देखते रह जाएं।
कोई कोई लोग बैच तो पहनते हैं पर वो छोटा वाला, यहाँ बटन वाला बैच, किसी को दिखे ना और कोई कहे बैच का है तो कहा ना ये क्या है, दोनों तरफ से। और कोई कोई लोग बाहर जाते तो इसको निकाल देते हैं, डर लगता है, ये यूनिफॉर्म है, कफन पहन के घूम रहे हैं, जब इसको पहन लिया तो रंगीन की दुनिया से वैराग आ जाए। अगला प्रश्न
जी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये एक विद्यार्थी ने पूछा है, रेगुलर नियमित विद्यार्थी है, ब्रह्मा कुमारी की टीचिंग्स पर चलता है। भाई जी पूछते हैं कि नियमित क्लास करता हूं, मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो दीदियां धन का महत्व बताती हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या यह बाबा की श्रीमत है या दीदियों की श्रीमत है? कमाल का प्रश्न।
ये तो दीदियां ही उत्तर देनी चाहिए।
आगे, जब भी मुझे धन लगाने की श्रीमत मिलती है तब मेरी मन की स्थिति खराब हो जाती है, फिर मेरा मन क्लास में रोज जाने का नहीं करता है, मुरली मिस करता हूं, मुझे इसमें ज्ञान में बाबा में संशय उत्पन्न हो जाता है, कृपया मार्गदर्शन दें कि श्रीमत क्या कहती है।
साकार महावाक्य है, बच्चे बाप से कहते हैं, बाप को कहते हैं बच्चे बाप से कि बाबा यदि आपको धन की आवश्यकता हो तो हमें बता देना, हम दे देंगे। बाप कहते हैं मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा क्या हम लॉटरी लें ताकि पैसा मिले और यज्ञ में लगाए? बाप कहते हैं ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। अगला, धन, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। बाबा हम तो आपके हैं, सब कुछ आपका है, पर धन पर कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, इसकी तरफ आंख मत दिखाना, ये हमारा है। सांप बैठता है ना, जो लोभी व्यक्ति होते हैं ना धन से बड़ा प्यार होता है, उन्हीं के लिए कहावत है भक्ति मार्ग, जब वो मरते हैं तो अगले जन्म में सांप बनकर अपने धन पर बैठे रहते हैं ताकि कोई ना दे। धन होना बहुत अच्छी बात है, परंतु यह भी सोचना कि ये जो सारा धन इतना कमाया हुआ है किस लिए उपयोग हो रहा है इसका, क्या करेंगे हम इस धन का। सिकंदर जब मरा तो उसने पहले ही कह दिया था, मैं जब मरूंगा मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर होंगे। उसके सिपाहियों ने कहा, सैनिकों ने कहा, ऐसी तो कोई प्रथा है नहीं हमारे पास। उसने कहा, यह करना पड़ेगा, मैं दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि सिकंदर सारे दुनिया को जीत कर भी जाते समय खाली हाथ गया, इसके लिए अर्थी से दोनों हाथ मेरे बाहर रखना। क्या हम लेकर आए और क्या हम लेकर जा रहे हैं? एक सूक्ष्म गहरा प्यार लोभ मन में पनप रहा है धन के प्रति। बाबा पर निश्चय तो बहुत है पर धन नहीं छोड़ना चाहते। धन में अद्भुत सी माया है, इसके लिए लोगों ने तो धन को ही माया कहा है। भक्ति मार्ग में विदेश में सन्यासी संप्रदाय, फ्रांसिसियन ऑर्डर, सेंट फ्रांसिस जब थे उनके आश्रम के दो नियम थे, एक था ब्रह्मचर्य, दूसरा था दरिद्रता। कोई धन नहीं रखेगा, कोई पैसा नहीं रखेगा अपने पास, क्योंकि पैसा आते ही माया चालू होती है। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। और जैसे ही सेंट फ्रांसिस गए उनके सारे शिष्यों ने धन लाना चालू कर दिया और उसका पतन हुआ। तो धन एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति का बड़ा सूक्ष्म आंतरिक मोह होता है उसमें, और जितना अधिक हो उतना कम ही लगता है। ये धन का स्वरूप है, जितना आप चाहिए और इच्छा और इच्छा और इच्छा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये इच्छा कभी कम ही नहीं होती है। जितना मिले उतना कम है, और हमेशा दूसरों के पास थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है, हमारे पास कम है ऐसा ही दिखाई देता है। भगवान जब कहते हैं, और दूसरी एक सूक्ष्म बात समझने की है, जो भी यज्ञ में बहने हैं वो किस लिए कर रही है? अपने लिए, उनका अपना तो कुछ है ही नहीं। उनका क्या है? कुछ है उनका अपना? उन्होंने तो अपना जीवन ही स्वाहा कर दिया है, यज्ञ की वेदी पर अपने जीवन को, अपने यौवन को, अपने सर्वस्व को स्वाहा करने वाली ये वही बहने हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। धन की जो देविया है वो यही है। हमारा धन इस कार्य में लग जाए ये हमारा भाग्य होगा। भगवान अपना जब महल बनाए तो वो याद करेगा कि ये वो बच्चे हैं जब मैंने स्वर्ग की स्थापना की थी, जब मैंने संगम युग पर यज्ञ रचा था तो इस माता ने सहयोग दिया था। वो गिलहरी, छोटी सी गिलहरी, उसका भी नाम उसमें है, राम के पुल बनाने वालों में। बड़े बड़े लोगों ने पुल बनाए, वो सारे बंदरों ने बड़े बड़े पत्थर लाए, पर उस गिलहरी का भी नाम है, क्योंकि उस लिस्ट में तो वो भी है कि वो भगवान की मददगार थी। हम भी तो उस लिस्ट में आ जाए कि हम वो है जो भगवान के मददगार थे, नहीं तो भी ये धन आज है कल चला जाएगा। किसके हाथ में है? लक्ष्मी का कोई ठिकाना नहीं। लक्ष्मी तो वहां है, वो नारायण के चरणों में दिखाई है। जिस हृदय में नारायण है वहां लक्ष्मी है। जहां भगवान है उसके पास स्वतः ही धन आ जाएगा, और जो धन को पकड़े हुए है वो जो है वो भी छूट जाएगा। धन अस्थिर है, हजारों लाखों हाथों में आ जाए और हजारों लाखों चले जाए, यज्ञ में लग जाए सब कुछ, जीवन सफल हो जाएगा। वैसे भी हम क्या दे रहे हैं यज्ञ के लिए? ना हमारे श्रेष्ठ संकल्प इतने हैं जो हम दे पा रहे, ना हमारा ऐसा कोई सहयोग है, ना तन का सहयोग है ना मन का सहयोग है। कम से कम धन का तो सहयोग करें, धन तो लग जाए हमारा इस यज्ञ में, भगवान के कार्य में लग जाए, उतना ही जीवन सफल होगा। और यदि चोट पहुंचती है हृदय को जब धन की बातें सुनते हैं, तो शायद अंदर धधकता हुआ मोह है, लोभ है, छोड़ना नहीं चाहते उसको। बड़ी पीड़ा है अगर कोई छीन ले तो। संकल्प करना है, तन मन धन सब तेरा, सब तेरा। और ये हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। तुम ना दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यज्ञ को, हजारों लाखों है इधर, ये तो हम अपना भाग्य बना रहे हैं। तो गहराई से इस विषय पर सोचना चाहिए। ओम शांति।
तो धन से लेकर हम कभी भी इस संशय में ना आए कि दीदियां क्यों कहती हैं। दीदियां नहीं कहती हैं, पर श्रीमत कहती है। और भाई जी ने भी इस पे बहुत अच्छी तरीके से प्रकाश डाला, समझाया। उम्मीद है हम सबके मन में ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है भाई जी से, मुझे ज्ञान सुनाने की सेवा बहुत अच्छी लगती है। जब जब दीदियां ज्ञान सुनाने की सेवा देती हैं, यानी कोर्स या क्लास, मुरली क्लास देती हैं, तो मेरी स्थिति बहुत अच्छी रहती है, परंतु कर्मणा सेवा में मेरा मन नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी विशेषता का कोई यूज नहीं हो रहा है। तो कृपया दीदियों को समझाइए कि मुझे
तो हमारे गुरु है
कि मुझे मेरी विशेषता अनुसार ही वाणी की सेवा दी जावे।
इसका निर्णय कौन करेगा कि तुम्हें क्या दिया जाए? जीसस क्राइस्ट के शिष्य उसके पास आते हैं, जीसस उनसे कहता है जाओ मेरा संदेश सबको सुनाओ। वो कहते हैं कैसे सुनाए, पहले ही लोग आपसे उखड़े हुए हैं, पहले ही लोग आपके विरोध में हैं, कैसे हम सबके सामने जाकर आपका संदेश सुनाए? वो कहता है गो, इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर। क्या बोलना है? वो कहते हैं हमको पता नहीं, हमको तो बोलने ही नहीं आता है भाषण। वो कहता है इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर, तुम्हें उस समय दिया जाएगा क्या तुम्हें बोलना है। क्या भगवान को यह पता नहीं कि मैं इस यज्ञ में हूं? क्या भगवान को यह पता नहीं कि मुझ में यह विशेषता है? क्या भगवान, चलो बाकी लोग तो अनभिज्ञ है, क्या उसको पता नहीं? ही दैट गिवेथ द ईयर शैल नॉट ही हियर, ही दैट प्लांटेड द आई शैल नॉट ही सी। जिसने आंख दी क्या वो ना देखे, जिसने कान दिया क्या वो ना सुने, वो सब कुछ जानता है। मैं निराकार साकार महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा सब कुछ जानता हूं। तो यदि भक्ति मार्ग में कहावत है, यदि कोई चीटी घुंघरू पहन ले, उसकी घुंघरू की आवाज भी उस तक जाती है, और हम में कोई विशेषता है और हम सोचते हैं भगवान तुमको पता ही नहीं, ये मेरा दुरुपयोग कर रही है बहने, मैं इतना महान वक्ता, मैं इतना अच्छा कोर्स कराने वाला, मेरे जैसी मुरली तो कोई चलाता ही नहीं, और मुझे ये किचन में, और वो भी सब्जी काटने की सेवा, कदापि नहीं। भगवान हे प्रभु कुछ करो, त्राहिमाम त्राहिमाम, बच्चे पर संकट आया है, समझाओ इनको, इनकी बुद्धि का ताला खोलो जो दूसरों की बुद्धि का ताला खोलती है। तिब्बत में एक महान योगी कभी हुआ है, मिलरेपा तिलोरेपा, मिलरेपे का शिष्य तिलोरेपा, वो जब अपने आश्रम में आया गुरु के पास, उसको बहुत उमंग था कि मैं बहुत बड़ा योगी बनूं, ज्ञानी बनूं। और जैसे ही पहुंचा आश्रम में, गुरु ने कहा अच्छा तुम जाओ, आज से तिल कुटते रहो। तिल कुटने का काम दिया उसको, और जब तक मैं ना बुलाऊं वापस ना आना, तुम्हारा डिपार्टमेंट वही है। हजार शिष्य थे वहां पर, हजार से भी अधिक। उसको जो काम दिया तिल कुटने का, ना तो वो सुबह का सत्संग कर सकता था, ना तो गुरु की वाणी सुन सकता था, कुछ नहीं, उसको एक ही काम दिया बस। और वो भी ऐसे निभाया उसने कि कभी कमरे से 12 साल तक बाहर नहीं निकला, तिल ही कुटता रहा। गया किस लिए था, ये प्रश्न भी नहीं पूछा कि मैं फिर ज्ञान योग कब करूंगा, उनकी भाषा में, हमारी भाषा में, कि मुझे तो बस यही काम, ये करने आया था क्या मैं यहां, मैं तो अपनी उन्नति करने आया था, आध्यात्मिक एनलाइटनमेंट के लिए आया था, और मुझे ये क्या काम दे दिया। गुरु कहता है तुमको बस वही करना है, और वो 12 साल तक कभी नहीं आता है। जब गुरु के जाने का समय आता है, गुरु उसको बुलाता है और कहता है आज से ये मेरा उत्तराधिकारी होगा। वहीं बैठकर उसको परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। वही स्थूल सेवा करते हुए वो मिल गया जो वहां सामने बैठे थे लोग, उनको नहीं मिल पाया। उसका नाम ही इसीलिए रखा गया तिलोरेपा, तिल कुटने वाला। तिल कुटते कुटते ही परम गुरु बन गया वो, मिलोरेपा का शिष्य तिलोरेपा। तो क्या किया उसने? ना तो ज्ञान सुनाया कभी किसको। वो सारे शिष्य सुनते थे और गांव में जाके ज्ञान सुनाते थे लोगों को, उसने कभी नहीं किया। ये भोली दादी थी, बाबा उसको भंडारी कहते हैं, मुरलियों में आता है। उसने किसको कभी ज्ञान नहीं सुनाया? उसका नाम मुरलियों में आता है, कभी नहीं ज्ञान सुनाया किसी को। वो स्थूल सेवा ही की, पर ऐसी प्यार से स्थूल सेवा की कि सबके दिलों को जीत लिया। भाई को बुलाती थी, कोई आते थे किचन में और उनको कहती, ये मैंने अलग से बना के रखा है, किसी को बताना मत मैंने तुमको दिया। फिर दूसरा भाई आता था, उसको भी देती थी और उसको कहती थी, तुम भी किसी को बताना मत मैंने दिया। हर एक को स्पेशल कुछ तो देती थी, पर कहती थी दूसरों को बताना मत। इतना प्यार से यज्ञ की, सेवा की, सब कुछ स्वाहा कर दिया। भगवान ये नहीं देखता तुमने क्या भाषण दिए, भगवान ये नहीं देखता तुमने कितना ज्ञान सुनाया, भगवान ये देखता है तुम्हारी भावना क्या थी यज्ञ में, रग रग में कितना समाया था वो। चाहे बाथरूम साफ करने की सेवा हो या लाखों के सामने भाषण देने की सेवा हो, महत्व इसका है नहीं, महत्व भाव का है। इसके लिए किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही को समझाओ कि जो कुछ दिया जा रहा है वो तुम्हारी योग्यता के अनुसार ही दिया जा रहा है, और तीनों ही प्रकार की तीनों रूपे से सेवा करनी है। वो भी महत्वपूर्ण है तो ये भी महत्वपूर्ण है। वो झाड़ू पोछा लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 7 दिन का कोर्स कराना। इसलिए किसी भी सेवा को छोटा नहीं समझना है। वो ब्रह्मा बाबा खुद ही सब कुछ करते थे, सब कुछ। इसलिए स्थिति महान हो चाहे कर्म कितना भी साधारण हो। ओम शांति।
बहुत अच्छी तरह से भाई जी ने समझाया तीनों सेवाओं का महत्व, तीनों प्रकार से, चाहे वो कर्मणा हो, चाहे वो मनसा हो, चाहे वो वाचा हो। भगवान को पता है हमारे अंदर क्या है, वो उसको यूज करती। अगला प्रश्न भाई जी, मुझे इन दीदियों में, सारा टारगेट दीदियों को पकड़ा हुआ है, बहुत सारी कमियां दिखती है। मुझे पता है ये संपूर्ण नहीं बनी है, परंतु जब भी ये ज्ञान सुनाती है तो ऐसी सुनाती है जैसे संपूर्ण बन गई हो। योग में मेरा यही चिंतन चलता रहता है, योग नहीं लगता, मैं क्या करूं। एक ऐसा ही प्रश्न, सेम ऐसा ही है, उत्तर इसका शायद सेम होगा।
ऐसे प्रश्न आपने चुने, ये आपकी महानता है।
एक प्रश्न और है, हम सेंटर पर हर प्रकार की सेवा करते हैं, परंतु हमें ऐसा लगता है कि औरों की अपेक्षा हमें स्नेह कम मिलता है, उन्हें ज्यादा मिलता है, हमें कम मिलता है। हम बाबा को देखकर चल रहे हैं, पर कभी कभी दीदी के स्नेह की उम्मीदें रहती हैं, क्या करें?
जैसे ही कोई ज्ञान में आता है, उदाहरण के रूप में कोई कुमार, और पहले दिन सेंटर आता है तो सेंटर की बहनें उसे मंदिरों की देवियां दिखाई देने लगती है, और धीरे धीरे संपर्क बढ़ता है, धीरे धीरे जान पहचान होती है, धीरे धीरे समीपता बढ़ती है, और फिर बाद में ये पता चलता है इनमें भी वही सारे अवगुण हैं जो हम में हैं, और फिर धीरे धीरे सम्मान कम होने लगता है। हर एक आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, इस ड्रामा में अभी तक कोई संपन्न नहीं बना है। यदि कर्मातीत की बाबा की एक परिभाषा है कि आत्मा स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर छोड़कर जब परमधाम चले जाए तब कर्मातीत, ये असंख्य परिभाषाओं में से एक परिभाषा, उस हिसाब से ब्रह्मा भी कर्मातीत नहीं बना है क्योंकि अभी भी सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन में है। तो एक तो राज समझना है, इस संसार में कोई भी संपन्न नहीं है, सभी पुरुषार्थी है, सभी प्रयत्न कर रहे हैं और कोई कोई आत्माएं दो कार्य एक साथ कर रही है, ये उनकी महानता है। खुद भी पुरुष संपन्न बनने का पुरुषार्थ कर रही है तो दूसरों को भी करा रही है। करा रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद बन गई है, ये तो उसके अतिरिक्त पुरुषार्थ है उसका, अपना पुरुषार्थ छोड़ के। और तुम क्या कर रहे हो, केवल अपना ही पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, उससे तो ये महान है कि वो खुद तो अपना पुरुषार्थ चालू है पर साथ साथ दूसरों को भी करा रही है। खुद तो अपना पुरुषार्थ चालू है परंतु यहां रहकर ये करना बहुत बड़ी बात है। ये चाहती थी तो ये भी संसार में जाकर सब कुछ कर सकते थे, ये चाहते थे तो संसार में नौकरी कर सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, पर वो सारा सुख, वो सांसारिक सुख छोड़कर, वो सारे बंधनों को तोड़कर सेवा केंद्र पर भगवान के यहां समर्पित होकर रहना मासी का घर नहीं, रहकर दिखाओ। वहां रहकर भाषण झाड़ना आसान है, यहां रहकर दिखाओ। नौकरी करना और सेंटर पर आना यह आसान है, घर पर रहना और यहां आना जाना करना यह आसान है, यहां रहकर दिखाओ। यहां सिक सिक झुक झुक मरना है पल पल, और क्यों कर रही है, इसलिए नहीं कि कुछ मिले, प्रभु से प्रेम उतना है इसके लिए। इन्हें साधारण समझने की गलती न करना। जिन्होंने यज्ञ की वेदिका पर अपना सर्वस्व सहा कर दिया वो अर्पिता है, वो समर्पिता है, वो निवेदिता है संसार की महानतम आत्माओं में से है। और यदि उनके अवगुण दिखाई दे रहे हैं, यदि उनके प्रति द्रोष दृष्टि है, यदि उनके प्रति विकार की भावना है, यदि उनके प्रति व्यर्थ संकल्प चल रहे, यदि उनके प्रति गुटबाजी कर रहे, यदि उनके प्रति यहां की बात वहां कर रहे, उधर की बहन की बातें यहां कर रहे, तो इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं। इसलिए सबसे पहले तो स्वयं को चेक करना है। और रही बात वो ज्ञान सुनाते हैं तो उन्हें वहां ज्ञान सुनाने की अथॉरिटी उन्होंने नहीं दिए, ऊपर से आई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, वो उन्होंने बिठाया है उस गद्दी पर, इस गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता या बैठ सकता है। एक बार मधुबन में एक हॉस्पिटल में एक मैडम आए थे, एमए इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर थे, हिंदी के प्रोफेसर, अभी अभी ज्ञान में आए थे 10-15 दिन तो हम थे और हमने कहा कि आप मुरली सुनाओ संली पर बैठ के, हिंदी तो बहुत अच्छी जानते हैं। उसने कहा मैं हिंदी तो जानती हूं पर यहां बैठने की हिम्मत मेरी नहीं है। यहां बैठने के लिए प्यूरिटी चाहिए, जो विकारों के चक्की में पिसे हुए हैं। और एक तरफ यह है संसार की सभी ब्रह्मा कुमारियां अनटच्ड, उनमें भेद तो है ना, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के एक भाषण में कहा था, एक भविष्यवाणी की थी, 1902 में उनकी मृत्यु हो गई, उसके पहले की हुई भविष्यवाणी, यज्ञ की स्थापना 1936-37 में हुई, लगभग 35 वर्ष पहले की हुई बात। एक समय आएगा उन्होंने कहा था, एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्मा संदेश देगी. अ टाइम विल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर. और वो यही है.
आगे लास्ट प्रश्न है. मेरे जीवन में काफी उतार चढ़ाव हुए हैं. मैंने बचपन से हर प्रकार से काफी संघर्ष किया है. जब मैं इस ज्ञान से जुड़ी तो थोड़ी राहत मिली, पर मेरा मन ड्रामा पर अटक जाता है कि जो मेरे साथ इस कल्प में हुआ वही हूबहू फिर से रिपीट होगा और हर 5000 वर्ष बाद भी रिपीट होता रहेगा. क्या ये ड्रामा चेंज नहीं हो सकता? लगभग ऐसा ही एक और प्रश्न है. एक तरफ कहा जाता है कल पहले जो हुआ वही हूबहू रिपीट होना है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ऊंच पद पाओगे. यह अपने आप में विरोधाभासी नहीं हो गया? कृपया स्पष्ट करें.
माउंट आबू में एक मंदिर है, लहरी बाबा, शिव का मंदिर है. लहरी बाबा, लहरें चलती है अलग अलग, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है कभी कहता है तुम्हें आवाज से परे जाना है, ये गीत संगीत कविता को बिल्कुल वैराग आ जाना चाहिए. कभी कहता है जब उदास हो जाओ तो अच्छे अच्छे रिकॉर्ड तुम्हारे पास चाहिए. कभी तो कहता है जो बच्चे कहते हैं हमारा डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से है और ब्रह्मा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, उनको कुछ नहीं मिलेगा. और कभी तो कहता है यदि इस ब्रह्मा को याद करोगे तो खाक नहीं मिलेगा तुमको, नरक में जाओगे, तुम्हें किसी देहधारी को याद नहीं करना है. यह भी बोलता है, वो भी बोलता है, वो भी बोलता है. एक तरफ कहता है ड्रामा फिक्स है, एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, इसमें बदली सदली नहीं हो सकती, टिक टिक चलती रहती है. कुछ दिनों पहले था एक टिक ना मिले दूसरी टिक से. और फिर कहता है तुम्हें पुरुषार्थ करना है, तुम्हारे हाथ में है, ऊंच पद पाना है तो ये करो वो करो, याऊं करो त्याऊं करो. विरोधाभास नहीं है, कुछ तो है जो हमें शायद समझ में नहीं आ रहा है. दो ड्रामा है, एक है छोटा ड्रामा और एक है बड़ा ड्रामा. जो छोटा वाला ड्रामा है वो हमारे हाथ में है और जो बड़ा है वो लास्ट है, अल्टीमेट. कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पुरुषार्थ ही नहीं करूं और मेरे भाग्य में तो वो है. अभी भाग्य बदल सकते, सुबह उठने के बाद हमारे हाथ में है. सारा दिन इंटरनेट पे बैठ के टाइम वेस्ट करते बैठूं, सारा दिन बातों में टाइम वेस्ट करते बैठूं, सारा दिन घूमने फिरने में टाइम वेस्ट करूं या सारा दिन ज्ञान योग करूं, तपस्या करूं, भट्टी है यहां जाऊं या मार्केट में घूमता फिरूं, हमारे हाथ में है. मार्केट में घूमो और फिर कहो कि ड्रामा में था, ड्रामा में ही ऐसा था, मैं तो आना चाहता था पर क्या करूं, ड्रामा में था. ड्रामा शब्द इज द मोस्ट मिसयूज्ड वर्ड इन दिस यज्ञ. ड्रामा शब्द उन शब्दों में से है जिसका सबसे अधिक गलत प्रयोग किया गया है. गलत हाथों में जाता है तो गलत प्रयोग होता है. ड्रामा केवल उसके लिए कहा जाता है जो हो चुका, पास्ट. एक मुरली इस पर भी थी कि ड्रामा शब्द कहने का अधिकारी कौन है, जो आत्मअभिमानी है, जो श्रीमत पर है, वही ड्रामा शब्द का प्रयोग कर सकता है. बाकी लोग खबरदार, गलत प्रयोग नहीं करना. तो प्रश्न फिर से पढ़ना. पहला प्रश्न.
मेरे जीवन में काफी उतार चढ़ाव हुए हैं. मैंने बचपन से हर प्रकार से काफी संघर्ष किया है. जब मैं इस ज्ञान से जुड़ी तो थोड़ी राहत मिली, पर मेरा मन ड्रामा पर अटक जाता है.
तो प्रश्न था कि वापस ऐसा ही रिपीट होगा, होगा पर अभी थोड़ी होगा, 5000 लंबा समय है, अभी क्यों चिंता कर रहे हो? अगर आज जो घटना हुई कोई कहे ये 10 साल के बाद होगी, होने दो, 10 साल तो बहुत लंबा समय है ना, उसका अभी से क्यों टेंशन हो रहा है? होगी तो होगी, रिपीट होते रहे. उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अभी अगर हम इसको ठीक करें, एक प्रश्न ये भी है कि ड्रामा को बदला जा सकता है, हाँ बदला जा सकता है, 8 घंटा योग का चार्ट कर दो बदल जाएगा, पहले करो उसके बाद आना। 8 घंटा योग का चार्ट कर दो, ड्रामा पूरा बदल जाएगा। ड्रामा की बात नहीं, हमारी दृष्टि की बात है, हमारी स्थिति की बात है। हमारा जब स्थिति डाउन है तो सब गलत गलत दिखाई देता है, जब स्थिति ऊपर है तो सब अच्छा ही अच्छा है, जो कुछ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, किसी से कोई शिकायत नहीं है जब हमारी स्थिति ऊपर है। स्थिति नीचे है तो सभी दोषी है, सब पर दोष मढ़ते हैं, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है इसकी वजह से। ये नहीं होता ना तो मेरा आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ होता, डिपार्टमेंट की वजह से, इस सेवा की वजह से सारी शिकायतें समाप्त। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा को देखते रहो, ड्रामा को साक्षी होकर देखो। सुबह भी हमने 6 बातें देखी थी ड्रामा की। ड्रामा कैसा है? विविधतापूर्ण है। ड्रामा कैसा है? कल्याणकारी है। ड्रामा कैसा है? रिपीट होता है, न्यायकारी है, फिक्स्ड है, एक्यूरेट है। ये सारी ड्रामा की बातें 24 घंटे में एक बार याद करनी है हर दिन। भगवान को पसंद है, तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। और जैसे कहा, 2 ड्रामा, एक छोटा जो हमारे हाथ में है, हम डिसाइड करेंगे मुझे क्या करना है सुबह उठने के बाद। ये पूरा मेरे हाथ में है, पूरा डिसीजन मेरे पास है, डेस्टिनी इज इन माई हैंड। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को वश में किया है। गीत सुना है ना, किस्मत को जिन्होंने वश में किया है वो बच्चे हैं हम। तो एक छोटा सब कुछ कर लिया, सारा पुरुषार्थ कर लिया, उसके बाद फिर जो कुछ हो गया उसको स्वीकार करना, वो फिर बड़ा ड्रामा है। ड्रामा अनुसार वो हो गया। और ऐसी बहुत सारी परिस्थिति होगी। मुंबई में मेगा प्रोग्राम था, एक बार बड़ा ग्राउंड लिया गया था मेगा प्रोग्राम, सुबह से बारिश चालू थी, सभी भाई बहनों ने इधर कमरे में उधर कमरे में, बहुत सारा ये था। मोहिनी दीदी आ रही थी मधुबन से, दादी आने वाली थी, जयंती बहन आ रहे थे, कई लोग आ रहे थे, और मेगा प्रोग्राम पूरा महाराष्ट्र के जितने सारे सेंटर्स की सारी बहनें गाड़ियां कर करके आ गई। प्रोग्राम बाहर वालों के लिए था, बीके के लिए नहीं था। पर बारिश चालू है सुबह से, तो सारे भाई बहनों ने बैठकर योग किया कि बारिश रुक जाए, शाम को प्रोग्राम है, बाबा बाबा बारिश रोक दो, आपकी सेवा हो जाएगी, आपकी सेवा है, आपका है सब कुछ, बाबा हमारा कुछ नहीं है, बारिश रोक दो। शाम हुई, बारिश और तेज हो गई, और वो प्रोग्राम बाहर वालों के लिए थे, केवल ब्राह्मण आत्माएं छाता ले लेके खड़े थे, बस कौन आएगा बारिश में, अब क्या कहे इसको बोलो। ऐसा भी होगा हमेशा, क्या तुमको तुम्हारी जीती होती रहेगी क्या? स्वाद का भी, हार का भी स्वाद चखना पड़ेगा, सब कुछ होगा इसमें, तभी तो अनुभवी बनेंगे। केवल जीतते ही रहे हमेशा, हर कितनी आत्मा है तो उसमें से बेचैन होगी कि कल सेंटर पर कैसे अनुभव जाके सुनाऊं कि बाबा को मैंने बोल दिया रोको बारिश, देखा ना रुक गई ना मेरी वजह से। कितनी आतुर होगी अपने अनुभव और गीत कविता लिखने के लिए, कैसे मैंने बाबा को बोल दिया और बाबा मेरी बात हमेशा सुनता है, कल देखा उदाहरण, बारिश तो रुक गई पर पता है सकाश किसकी थी। क्रेडिट इधर, पति ज्ञान में आया पता है कैसा, रोज अमृत वेला सकाश किसने दी, ये मेरी सकाश का कमाल है। हमको ये ऐसे थोड़ी ना है लिंबू टिंबू। तो ड्रामा को समझना है, ड्रामा उसके लिए नहीं है जो होने वाला है, पास्ट के लिए ड्रामा, जो हो गया फुल स्टॉप, अब उसका पश्चाताप नहीं करो, आगे बढ़ो। और ड्रामा में फिर से रिपीट होगा, वो होगा बहुत समय है उसको, उसकी अभी से चिंता नहीं करनी है। और लास्ट उत्तर है, अगर बदलना है तो 8 घंटा योग का चार्ट कर दो, कल सुबह अमृत वेले से पहले ड्रामा पूरा बदल जाएगा। ओम शांति।
भाई जी बस एक प्रश्न और है, ये हमारे जो न्यू बच्चे हैं बाबा के, नए स्टूडेंट्स हैं, योग आंख खोलकर क्यों करें, बंद करके नहीं कर सकते?
करो। करना है तो करो। बाप आया है, माशूक आया है, और माशूक को देखने के लिए आंख बंद करके कैसे देखोगे उसको, कैसे दिख पाएगा वो? वो तुम्हें शक्तियां दे रहा है। इन आंखों में बड़ी शक्ति होती है, आंखों से एनर्जी ट्रांसफर होती है। तीन प्रकार की दीक्षा है भक्ति मार्ग में, नयन दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, मंत्र दीक्षा। केवल दृष्टि दे देना, वो व्यास ने संजय को दृष्टि दे दी ऐसी शक्तिशाली दृष्टि की, उसे दिव्य दृष्टि प्राप्ति हो गई। गांधारी जीवन पर्यंत पट्टी बंद की थी, एक ही बार पट्टी खोली, अपने बेटे से कहा निर्वस्त्र होकर आना, मैं अपनी सारी शक्ति लगा दूंगी उस दृष्टि में। दृष्टि में इतनी शक्ति है, मेरी सतीत्व की शक्ति, मेरी पवित्रता की शक्ति, मेरी शिव भक्तिनी थी वो मेरी भक्ति की शक्ति, तीनों शक्तियां लगा दी उस एक पल के लिए। पर टाइमली इंटरवेंशन बाय श्री कृष्ण, दुर्योधन करते आ रहे थे ऐसे, और मां के सामने कुछ तो सोचो। वो कहता है ये बात तो सही है, लंगोट विंगोट पहन के आ जाता है, और मां आंखें खोलती है, सारा शरीर वज्र का बन जाता है उतना छोड़ के। तो वो कहती है तुमने ये क्या कर दिया दुर्योधन, मैंने अपनी इस दृष्टि में, इस एक सेकंड की दृष्टि में अपनी सारी शक्तियां डाल दी थी। वो कहता है माता जी मैं फिर से आता हूं। वो कहता है अब नहीं हो सकता है, अब तो गया, उतना भाग तुम्हारा वज्र का नहीं बना। तो दृष्टि में इतनी शक्ति है, और भगवान जब सुबह सुबह उठ के दृष्टि दे रहा है तो आंखें बंद करनी चाहिए या आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखना चाहिए? लेजर किरणें निकल रही है उसकी आंखों से, और हम आंखें बंद करके। और दूसरी बात, आंखें बंद करना इंडिकेशन है कि अभी नींद आने वाली है। जैसे हम रात को सोते हैं तो आंखें खोल के सोते हैं क्या? क्या करते हैं? आंखें बंद करते हैं, और आंखें बंद करने के बाद जरूरी नहीं है तुरंत नींद आ जाएगी, वो तैयारी है, पूर्व तैयारी है। किसकी? नींद की। तो योग में भी इसका मतलब हम पूर्व तैयारी कर रहे हैं आंखें बंद करके। एक दिन, कुछ दिन पहले हमने अभी मधुबन में एक भाई देखा था, पूरी शॉल ऊपर से नीचे तक और योग चालू था। क्या चालू था पता नहीं, पूरे ही सब तरफ से लेके बैठ गया था। तो वो कोई योग नहीं है। तीसरी बात, आंखें खुली रखना अर्थात जागरण की स्थिति है, अलर्टनेस की इंडिकेशन है। आंखें खुली है, फुल अलर्ट है, हम पूरा जागृत है, मन मस्तिष्क जागृत है। सोचो घर में किसी की डेथ हो गई या किसी को बीमार है, मां परेशान है, चिंतित है, आंखें बंद कर देती है क्या? देखती है उसको, क्या हुआ क्या हुआ, अलर्टनेस की सिचुएशन है। घर में चोरी हो गई, आंखें बंद करके सोचते किसने की किसने की? नहीं, खुली अलर्टनेस की सिचुएशन है। तो आंखें खोल के रखना अर्थात अलर्टनेस। और चौथी बात, हमारा योग केवल अमृत वेला योग नहीं है, सारे दिन भर योग करना है। खाली अमृत वेला योग कर लिया हो गया, ऐसा नहीं। तुम्हें चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते बाप को याद करना है, तो दिनचर्या में याद करने के समय आंखें बंद करोगे? नहीं, तब तो आंखें खोल के ही रखनी है ना। तो वही अभ्यास सुबह भी करना है। ये एकमात्र ऐसा योग है संसार में जहां आंखें खुली रखकर योग करना सिखाते हैं, ताकि। और दूसरी बात, आंखें यदि किसी की खुली है, जैसे कोई मजनू और लैला की यादों में खोया हुआ है, आंखें खुली है, सामने से बारात चली गई, कोई उसको पूछता है यहां से बारात गई क्या? वो कहता है मुझे नहीं पता। आंखें थोड़ी देखती है, आत्मा देखती है। इसके लिए जब योग में है, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, किसका मोबाइल बजा, ये सब। कुछ दिन पहले, 2 या 3 मास पहले, मुरली में एक वाक्य आया था, सबने नोट किया होगा, याद में सुनना बंद हो जाता है। याद है? कुछ दिन पहले, 1 महीने के अंदर आया है, याद में सुनना बंद हो जाता है। तो याद में जब है आत्मा, इधर की आवाज है, कौन क्या कर रहा है, ये सब सुनना बंद हो जाता है। इसका संबंध आंखें खोलने और बंद से नहीं, आंखें तो खुली है, आंखें थोड़ी देखती है, आत्मा देखती है। तो इसलिए हाँ, पर अगर किसी का योग आंखें बंद कर कर ही अच्छा लगता है तो वो भी ठीक है, फिर लगाओ और करो याद बाबा को, वो भी ठीक है करो। अगर आपको लगता है कि हमारी बुद्धि आंखें भटकती है इधर उधर, तो आंखें बंद कर को लगाओ योग, माफ, वो भी ठीक है। ओम शांति। अभी सभी योग में बैठेंगे आंखें खोलकर। बाप आया है, फाड़ फाड़ कर देखना है उसको आंखें।
एक बार जोरदार जोरदार तर-तर ध्वनि से भाई जी का धन्यवाद है। हर प्रश्न का बहुत ही सुंदर ढंग से उत्तर दिया और निश्चित ही हम सबको उत्तर मिले। भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स, बाबा का भी थैंक यू, आप सबका भी।